તારીખ 30/9/1993 મંગલ પ્રારંભના વિષય ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 25.
मंदता हो उतना सुख के लिए जो खास इनके जो पात्र नहीं है, फिर भी जितनी कसाई की जिसको मंदता हो, तो कसाई की मंदता जितने उतना शुद्ध कर्म के प्रमाण में तो किसी का शर्म नहीं रखते। एक सर्वज्ञ परमात्मा किसी की शर्म नहीं रखते। आप चाहे जैसे क्रिया को भाव के अनुसार ही कर्मबंध होगा, परिणाम तो बाह्य क्रिया को भी हो, कर्मबंध तो परिणाम के अनुसार होगा। और भगवान के ज्ञान में भी वैसा ही आएगा, सर्व के ज्ञान में ये दो जगह फर्क पड़ने वाला नहीं है।
सिद्धांत में ऐसा बताया गया है कि अशु आयु अशु नाम शुभ उत्तराधि का बंध नहीं पड़ता। तो ये जो अशुभ में शुभ में अंतर बताया गया है, तो हम अगर भावना में ऐसा रखते हैं कि हमारे अशुभ आयु में बंधे साता नहीं आवे, ऐसे भाव रखते हैं तो आसक्ति के भाव अशुभ भाव है। ऐसे भाव बिना रखे अपने आप ही अशुभ में शुभ से न जाए, इसलिए हम पूजा करते हैं। करने के समय ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि हमारे घर कम लोग नहीं आ रहे, न बने, ऐसे परिणाम नहीं हुआ। ऐसे परिणाम न होते हुए कि दुकानदारों से इसमें जो अंतर है वो अंतर तो है,
कसाई की मंदता के लिए ताका का अंतर है, उसमें कोई नहीं है। फिर भी अगर हमारा लक्ष्य जो है वो यथार्थ होता है, तो ये जो हम चाहते हैं कि ऐसा हमको फल नहीं मिले, ऐसा फल नहीं मिले, वो बात हो जाएगी। अगर हमारा लक्ष्य यथार्थ
है, विधान बन जाए तो विद्या
तो है,
हमेशा
चाहते हैं तो विधान है, लेकिन विधान बिटेगा तो कि हमारा निदान मोक्ष का मिला, मोक्ष का होगा तब, इसके पहले तो मिलने वाला नहीं,
तो निदान में नहीं मिला, तो निदान नहीं है, तो तुम्हारा ध्येय
हाँ ध्येय है, तो ध्येय और निदान दोनों साम आपके सामने है,
बहुत अंतर है।
हाँ आपके सामने है, प्रतिपक्ष में है। जो संसार के आशाएं हैं वो निदान में जाती है, और उसको टालने के लिए ध्येय चाहिए हमें। अगर ध्येय नहीं आता है तो वो निदान जाने अनजाने में बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक चालू रह जाएगा, क्योंकि अभिप्राय में जो बात है उसका आश्रय चालू रहता है।
अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो वो विद्यार्थी
रहता है। अपने परिणाम के चांस है, कितना रस आता है कितना रस नहीं आता है, और जोड़ते कौन जुड़ते हैं क्या होता है, तो अपना परिणाम को भीतर में देखने से हमारे परिणाम के बहुत से पहलू जो है वो समझ में आएंगे। परिणाम के बहुत से पहलू होते हैं और उसका परिज्ञान हमारे अंतरवलोकन से ही हो सकता है, उसमें दूसरा कोई इसके देख कोई सच्चा ज्ञान करने का कोई इसका प्रयोग नहीं है। यही प्रयोग है कि हम उसको अच्छी तरह उसको देखें, उसको सूक्ष्मता से देखें, अधिक सूक्ष्मता से देखें, तो बहुत सी बातें हमें नजर आ जाएगी कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस मात्रा में हो रहा है, उसकी जो डिग्री है तो देखने में
आएगी।
उदासीनता बहुत हो जाएगी, उपेक्षा बहुत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, फिर कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल उदासीनता हो गई या रुचि हो गई उसको कहते हैं क्या, तो जैसे दवाई पीनी पड़ती है, कड़वी दवाई है पीनी पड़ती है, तो पीने में गुस्सा नहीं आएगा, मुंह बिगड़ जाएगा पीछे पीछे, ऐसे हालात में उसका इतना नुकसान नहीं है दवाई के बगैर, लेकिन जिस मात्रा में रस आएगा जितना अच्छा लगेगा उतना तो नुकसान है। और तो अपना अवलोकन करने का है, अपने परिणाम मालूम करेगा दूसरा कुछ बताएगा,
पूजा वगैरह करते हैं, निदान सब आ सकता है। दृष्टिकोण
उल्टा है तो सब बात उल्टी पड़ जाएगी, परिणाम बिगड़ जाएंगे और नया कर्म संबंध तेजी से होगा। जिस रोग से हमारा परिणाम बिगड़ा उसी वक्त ऐसा ही रोग, इससे खराब रोग होने का नया कर्म संबंध हो जाएगा। असाता का यही हालत होगी। जैसा हमारा दृष्टिकोण है, जैसी हमारी योग्यता है, ऐसा परिणाम होंगे। विज्ञान का खास प्रयोग का एक मौका मिला है, ऐसा प्रयोग का मौका बार बार नहीं मिलता। दुख को जानो, पीड़ा को जानो, कितनी डिग्री में है उसको जानो, लेकिन उसमें जानते वक्त दुखी नहीं हो उस तरह से जानो। भिन्न रहेंगे तो दुखी नहीं होंगे, जानकारी हो जाएगी कि पीड़ा तीव्र है या पीड़ा मंद है, हृदय कैसा है उसकी जानकारी हो जाएगी, लेकिन इसका दुख नहीं होगा। ज्ञान होगा, दुख नहीं होगा। ऐसे विज्ञान हो सकता है और प्रतिकूल प्रसंग इसमें सबसे अच्छा प्रसंग है। जो भी प्रतिकूलता का प्रसंग है वो सबसे अच्छा है, अधिक कल्याणकारी समझ में आता है। क्या ऐसे प्रसंग योग्यता वाले मुमुक्षु को और ज्ञानियों को तो अधिक कल्याणकारी समझ में आता है। इसलिए आत्मार्थ ही जीव कभी प्रतिकूलता से ज्ञान होता ही नहीं, वो तो इंतजार करता है कि ऐसे प्रसंग आए तभी हमारी परीक्षा होगी। हमारा इम्तिहान का काल है, पूरे सज धज के तैयार बैठे हैं, ऐसे नहीं है कि हार जाए। ऐसी तैयारी गुरु से ही ऐसी तैयारी होती है बराबर, कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती।
वो बल कहाँ से आता है? वो बल कहाँ से आता है?
बल हमारा आत्महित का ध्येय है, इसमें से आता है। किसमें से आता है? हमारा आत्महित का ध्येय है, इसमें से आता है कि हमको तो ध्येय के प्रति जाना है। हमारा ध्येय जो है वो वहाँ से ऊपर पैदा होता है।
तो
इलाज कराने में क्या है, अधिकार अपना नहीं रहता है इसमें, क्या है शरीर पे भी अपना अधिकार नहीं रहता है। एक भागीदारी की चीज है, क्या है? पार्टनरशिप आर्टिकल है, वो पार्टनरशिप का आर्टिकल है, अकेले का नहीं है। हम धनी बन जाए तो ये गड़बड़ी हो जाएगी।
इसको बना से जान से लो इंसिडेंस किया
है।
ये अचेतन प्रेत धरी रद रेत धरी मन खेत की क्यारी व्याधि की ओर अनादि की ओर विराधि ओर समाधि की न्यारी रेत ये दिए करे दे जानी कहाँ तो ये लागत प्यारी दे तो कोई तजे की निजान अगर कोई तजे की ना दे की है
बस ध्यान ही है। बहुत कुछ कहा
है, इसलिए देख के उन्होंने कहा कि अच्छा प्रसंग आया,
बहुत कुछ किया है। व्यवहारिक मामलों में परिच्छानुचारी बन जाना, क्या अपनी इच्छा से नहीं चलना, जिसका जैसा ठीक लगेगा ऐसा कर लो, हमारी चीज है ही नहीं, हम उसके धनी बने तो बहुत प्रकार के विटमिना हो जाएगी। हमारा धनी पड़ा छूट गया तो जिसको जैसा चाहे वैसे कर लो, जो होना चाहे वो होना ही है, जो होने वाली है वो तुम, उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है। भाव किसी का कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारी चले तो हम कुछ करें नहीं, अगर हमारी चले तो हम कुछ ही नहीं करें। क्यों? कि एक भी पर्याय अपने स्वकाल से हटती नहीं, ऐसी श्रद्धा ही सुख का मूल है हमारे तो। में सुखी है फिर क्या आपत्ति? हमारे आयुष तक की जितनी पर्याय होने वाली है क्रम से बिल्कुल, हाँ एक पर्याय क्या आगे पीछे होगी? क्या कोई फर्क पड़ सकता है क्या किसी से, हमसे या दूसरे से? कोई फर्क पड़ता
है।
नहीं, ऐसा इसमें इस श्रद्धा के बल में रहना यही पुरुषार्थ है। ऐसी श्रद्धा का बल रहना यही पुरुषार्थ है, वरना तो भागा दौड़ी हो ही जाएगी। ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वो कर ले, वो कर ले, क्यों दवाई नहीं आई, क्यों डॉक्टर नहीं आया, क्यों इलाज नहीं हुआ, क्यों तबियत में अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चालू आतुरता कर करके मौत हो
जाएगी।
वो भागीदारी में अपना हिस्सा का पकड़ करे तब तो परेशान सारे हो जाए। तो करने तो करते हैं, अपन तो नहीं करे।
आप मुझे यहाँ आए भागीदार के साथ ले आए भी हैं,
उनका प्रश्न अलग है,
ममता नहीं आए तो
उनका प्रश्न अलग है। जो भागीदार में विचार भेद होता है तो क्या होता है, बस उतना प्रश्न है इसका।
श्रद्धा का ऐसा
बल होता नहीं जी,
निश्चल रह सके, अधिक रहे
मनुष्य का श्रद्धा का ऐसा बल ना चाहता। ये बल जैसा हमारे अगर हमारा ध्येय है तो बल आएगा ही आएगा, हमारे परिणाम ध्येय को अनुसरण करने लगेंगे हर हालत में। ऐसा प्रारंभिक
स्थिति में
जब ध्येय
व्यवहार किया तब उस समय जैसा बल
या तो हट कर ले या तो निर्बल हो जाए, से होगा हट से भी काम होने वाला नहीं, निर्बलता से तो नुकसान ही नुकसान और हट से भी नुकसान ही
नुकसान।
क्यों नहीं पकड़ में आएगा, हम जागृत है, ज्ञान भारी चुप है, तो ज्ञान में क्यों नहीं जा समान पकड़
में आएगा। दुनिया है दुनिया बदलती है उसका
अनुमान नहीं लगता है। एक दफे ढेर बांध करके तो पूछो पूछेंगे नहीं आप। ये जो प्रश्न है वो इसलिए खड़े होते हैं कि इसके पहले पहले जानकारी करने का लोग हमारा मिलता नहीं, सब बात की जानकारी करनी है और फिर जानकारी करके दरवाजा बंद करके भीतर में बैठ जाना है। चलो संतोष हो गया, ये जानने को मिला, इतना प्रश्न में हुआ, इसका उत्तर भी मिल गया, तो ये बात अपने को बैठती है, बस आगे फिर बढ़ने का नहीं होता। ईमानदारी से तो देख लेना, ईमानदारी देख लेना और क्या पता चल जाएगा, अपने अंतःकरण को कटोल लेना और क्या इसमें पूरा पता चल जाएगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। दूसरे के घर में तो नहीं होता है, होता है हमारे में होता है। उस कारण से उसे उससे छूटने की वृत्ति सहजी हो जाती है, आसक्ति के प्रसंग में, जिससे वह सर्व प्रकार के लोभ प्रसंगों में कहीं भी नहीं फंसता है, जिसका एकमात्र कारण यह मोक्ष का ध्येय है, वरना अनुकूलता में जीव फंसे बिना रहे नहीं, फंसे ही फंसे। क्यों कि वो तो अनादि से पड़ी है अभिलाषा, तो संसार सुख के अभिलाषा तो अनादि से पड़ी है, वो तो ध्येय ही है, अनुकूलता आ जाएगी, रस बड़े बिना रहेगा नहीं तो फंस जाएगा। परंतु जिसे ऐसा ध्येय निश्चित न हुआ हो उसे तो मोह प्रसंग में मोह रस उत्पन्न हुआता है, जिससे वह बंधन को प्राप्त होता है, अवश्य बंधन उसमें होता ही है। श्री आत्मसिद्धि शास्त्र के गाथा 38 और गाथा 108 में उन्होंने यथार्थ मुमुक्षुता के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए मात्र मोक्ष अभिलाष शब्द के द्वारा उत्तर का संकेत किया है। आत्मसिद्धि शास्त्र में वो दो गाथा में वो बात कही है, तो दोनों जगह ये शब्द दोहराए हैं कि मुमुक्षु किसको कहें कि जिसको मात्र मोक्ष अभिलाष हो उसी को ही मुमुक्षु कहते हैं। संसार के लिए अभिलाष हो पर मुमुक्षु है वो बात मुमुक्षुता में वास्तव में तो घटित नहीं होती। जीवन का ये कोई भी उदय प्रसंग में विस्मरण न होने से उसे लक्ष्य कहने में आया है। लक्ष्य कह क्यों कहा, ये नहीं कह करके लक्ष्य कहने पीछे क्या अभिप्राय है गुरुदेव का कि वो विस्मरण स्मरण से पार की चीज है, स्मृति विस्मृति उसको लागू नहीं होती है, और ये लक्ष्य है वो हटता ही नहीं, उसी को ज्ञान में से नहीं हटे उसी का नाम लक्ष्य है। इसलिए भेद के जगह तो भी स्वाध्याय करे कुछ भी करे हरेक सुबह सुख परिणाम है वो चीज ही हटती नहीं। जैसे हम हमारे वहां कोई अच्छा हमारा क्लाइंट आता है जो बहुत हमको मुनाफा देता हो या कमीशन देता हो तो लाभ आर्थिक लाभ देता हो ऐसा आदमी आता है तो हम इसकी खातेदारी जरा विशिष्ट रूप से कर लेते हैं। तो खातेदारी करते रहो खर्चा भी हमारे परिवार के सदस्य के लिए नहीं करे एक दिन में उतने एक दिन में कर लेने शायद हाँ तो हमारा लक्ष्य हट गया क्या, हमने नुकसान किया क्या, हमारा लक्ष्य बराबर है इसलिए हमने ऐसा कहा, पक्का लक्ष्य है इसलिए इतना नुकसान किया, नुकसान नहीं किया लाभ के खातिर किया है, बनता है कि नहीं बनता है। तो इसलिए हर हालत में
लक्ष्य बनाने के लिए तीव्र रुचि चाहिए,
तीव्र रुचि तो बाद में आएगी, रुचि की तीव्रता तो बाद में आएगी, लेकिन अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, हमें हमारा आत्मरित करना है वो बात में कहीं बोल न हो, शुद्ध अंतकरण से पूरी ईमानदारी से ये बात हो तो फिर आगे के नए सत्र जो मुमुक्षु की भूमिका के परिणाम है आनुषंगिक परिणाम जिसको कहते हैं जो स्वतः ही आने वाले परिणाम है वो स्वतः अपने आप होने जा रहे हैं, होने जाएंगे, इसमें बिना कर्तृत्व भी होते जाएंगे। कितना एक इस नीर में कितनी ताकत पड़ी है
लक्ष्य के साथ रुचि मिली हुई नहीं है, लक्ष्य जिसका हुआ है उसको स्मृति जरूरत की है
रुचि तो जिसको हम रुचि कहते हैं वो यहाँ से शुरू होती है, रुचि दर्शन मौखिक भिन्नता को रुचि कहते हैं। तो पहले दर्शनों की मंदता का प्रारंभ कहां से होता है, शुरुआत यहां से होती है, इससे पहले कोई शुरुआत होती है सो बात नहीं है, कहना वास्तविक शुरुआत का मतलब क्या है कि शुरुआत यहां से होती है मुमुक्षु के जीवन की। फिर मुमुक्षु के जीवन में जितने भी गुण हो आत्मरुचि का हो जो भी जिस प्रकार का हो तो सब प्रकार का गुण जो है तो इसे शुरुआत के कारण से ही होता है ये कहने का। इसके पहले हम कर लेते हैं जो भी तो वो कहेंगे दूसरे लोग देखो छोटी उम्र में इतना त्याग किया इतना वैराग किया इतना व्रत लिया वो कर दिया वो कर दिया तो रुचि वाला है ऐसा मानेगा, बाद में कुछ दम शुरुआत ही नहीं होती है। बस ये गुरु मंत्र समझ लो आप कि शुरुआत ही नहीं होती है किसी की, माने कि शुरुआत हो गई या हम आगे बढ़ गए तो उसको इसी विषय में गलत फहमी है बड़ी भूल है, वो हो ही नहीं सकती, तो सफलता आएगी नहीं उसमें कभी, ऐसी चीज बहुत अनुभवपूर्ण बात लिया है अपने अनुभव से लिया। जो स्मृति विस्मृति से परे हैं यह तो सभी के अनुभव गम्य हैं, के लक्ष्य में निरंतर रहते पदार्थ के लिए स्मृति की अपेक्षा ही नहीं रहती। रह सकती है क्या? नहीं रहती। क्या है सुख का निश्चय क्या है, इसकी स्मृति करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती। और जिसे ऐसा पूर्णता का लक्ष्य हुआ हो, अभी तक तो भूमिका की बात चली, अब हुआ हो इसकी बात चलेगी, वैसे मनुष्य जीव का सहज परिणाम कैसा होता है, होता है क्या, हो जाता है, यह विचार नहीं है, करना नहीं पड़ता लेकिन हो जाता है। उस जीव को कार्य सिद्धि हेतु गंभीरता होती है, ये क्या चीज है, गंभीरता क्या चीज है, कि हम कोई मामूली कार्य का प्रारंभ नहीं किया, मोक्ष पद के अभिलाषा या मोक्ष का ध्येय, मोक्ष कमाने का है, मोक्ष कामेन, ये कोई मामूली चीज के लिए हमने निर्धार नहीं किया है। जगत के जितने भी कार्य है, जितने भी कार्य है, जितने भी प्रसंग है, तो कोई प्रसंग की बराबरी इससे नहीं हो सकती।
तो इसकी जो गंभीरता आनी चाहिए, जरूरी है उसका जो मूल्यांकन होना चाहिए थे और मूल्यांकन के दौरान जो गंभीरता खड़ी होती है वो नहीं आई है। बस इसलिए हमारी किस्मत जहाँ पापी हो चुके हैं हमारी जो है वो किस्मत बदलती नहीं है, उसमें सुधार होता ही नहीं है। आगे सुधार कहाँ से होगा? मूल में बराबर तो पूरी गंभीरता आ जाएगी। तो मैं जिस काम से निकला हूँ अभी वो काम से शेष किया मेरा कोई वक्त नहीं, मेरी भगत नहीं मिल जाती। सब निर्भुल जो लगता है मुझे कोई प्रसन्नता मुझे नहीं आएगा उसको। ऐसे एक महान की महान बात अपने वक्त में जम जाती है तो फिर कहीं भी कर्म दिया है क्या कुछ कैसा परिवर्तन हो जाता है कि उसको पूरी गंभीरता अपने गुरु के विषय में आ जाती है। गंभीरता है तो अपने खुद जाने का समय मानेगा मैं इसे देख लिया तो क्या करना है क्यों आप मिलेगा बहुत दुनिया में जो है इधर क्यों आए वो विचार देश के मंदिर में क्यों आए उधर इनके पास क्या पड़ा है क्या कोई संसार के विकास पड़ा है क्या विचार के पास तो कुछ नहीं है। एक परमाणु भी कोई देने वाले नहीं और वो एक परमाणु पर नजर नहीं करते वो अपनी देर को भी छोड़ करके सीधा लेकर जाने वाले हैं। ऐसे अरविंद भगवान के मंदिर में आए हैं तो क्यों आए कोई दिखावा करने को आए क्यों आए मतलब असर करो तो सोच कर तो पता करो तो पता चल जाए ये जरूरत क्यों है हमारे जब बताता है उसमें कोई घर का रहता है उसका क्या घर रहा कैसे रहा वो रहने वाला नहीं उसका जिसको लक्ष्य है उसके क्या कैसे घर रहेगा घर बने जाने का परिणाम उसको आगे जाकर रहने वाला
सबसे पहले तो उस जीव को कार्य हेतु
विकास आती है तथा कार्य के प्रति लगन या प्रतिबंधा रहती है। हमारा कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए यानी हम शीघ्र से शीघ्र पूर्णता को प्राप्त हो जाए ऐसे लगन होती है। जैसे हमें यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, यहाँ से जाने में पौना घंटा लगता है, 40-45 मिनट लगती है और टाइम हो चुका है, तो उस पहुँचने में हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है। ऐसी जो हमारी पहुँचने की प्रवृत्ति है उसमें कितना भी ट्रैफिक हो, क्या हमारी जल्दी से पहुँचने वाली वृत्ति में कोई ट्रैफिक आने से कोई दूरा बना जाता है क्या? और से मिल जाए ये काफी हो सकते चलता है हमारे पहुंचने में। ऐसे हमारे सांसारिक प्रसंग है, भाव भावांतर है कि हमारे खुद पद के एयरपोर्ट पर पहुंचने के ट्रैफिक है कौन से हैं, बीच में आने वाले ये ट्रैफिक है, क्या उससे हमारा जीव विलास होता होता है क्या? प्रश्न क्या है इनका? कोई बात आ जाती है तो विस्फोट हो जाता है, मतलब आपने वहां पहुंचना है वो बात ही नहीं रही जाता। जब ट्रैफिक आया तो आपकी वृत्ति तो तेज होनी चाहिए, जब ये बड़ा ट्रैफिक आ गया कैसे कैसे भी इसको से निकल जाए, जैसे कैसे भी इसको पार करके तेजी से पहुंच जाए, वो अपने फिर जाएगा हमारा तेज फिर जाएगा तो पूरा आगे का जो काम है पहुंचने का तो सब चौपट हो जाएगा, पहुंचने के जो काम करना है वो बुरा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तो सिर्फ प्लेनी नहीं छूटता है, लेकिन फिर जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सारा काम चौपट होता है। तो इसलिए हमारी जो जल्दबाजी होती है, हमारी वृत्ति में जो तेजी आती है, तो बीच में आने वाले ट्रैफिक से या कोई भी अवरोध आता है तो जैसे कैसे भी हम रास्ता निकालते हैं, कड़ी में पंचर हो जाए क्या करेंगे, जल्दी से टैक्सी पकड़ लो, पंचर हो गया तो रोने लग जाएंगे, अरे अरे पंचर हो गया शादी नहीं पहुंच पाएंगे, अभी नहीं पहुंच पाएंगे, रोने लग जाएंगे, पकड़ो जल्दी दूसरी गाड़ी जल्दी पकड़ो। उसको क्या बोलेंगे ड्राइवर साहब को, डब्बल पैसा लेना लेकिन तेजी से निकलना है, क्या बोलते हैं? ये ऐसा ही होता है, जिसको पहुंचना है ईमानदारी से, पहुंचना है ईमानदारी से, वो बात रही उसको यही होगा, उसको यही लगेगा लगन से आती है कि हमारे पास समय कम है, आयु अनिश्चित है और काफी मात्रा में हम भोग चुके हैं, जो 40 के ऊपर गए तो 50% तो भोग चुके हैं, बाकी 50% है या नहीं है तो भरोसा नहीं है। तो इसे आगे जाने वाले के तो ये बोनस नहीं समझा, इसके भी जो आगे है आयु है उसको तो सब बोनस नहीं है। अब इसका दुरुपयोग करना या उसका सदुपयोग करना ये हमको देखना, तो ये जल्दबाजी हो ही जाएगी हमारे काम के लिए, उसको गंभीरता आ ही जाएगी, आए बिना नहीं रहती, काम बहुत है, लंबा लंबा काम है, हमारे पास समय कम है, एक बार हमारी समझ में इतनी जमेगी, इतनी जमेगी कि हम फालतू का नहीं होंगे। फालतू मैंने ये धंधा व्यवसाय कुटुंब परिवार जो भी होंगे ये सब फालतू का फालतू है और कुछ नहीं, क्यों तो हित नहीं है, फालतू भी क्या है, फालतू में तो नुकसान नुकसान कुछ नहीं हो उसको फालतू कहेंगे, ये तो उल्टा के नहीं है, तो रस खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा रस जो है देते हैं संसार में वो खत्म हो जाएगा। कि रस खत्म होना उसी को नाम, उसी का नाम सही समझ रहा है, अगर हम समझते भी है और हमारा रस नहीं गया तो ये समझ नहीं है, कुछ गैर समझ इसमें खड़ी है या पड़ी है, ऐसी बात है आ जाता है। ज्ञानियों को सब कुछ बताया है, बार बार हम उसकी बात करते हैं, संतों महाराज के छात्र हैं, ज्ञानियों ने जो लिखे आचार्य संतों महाराज का होश है, साधन देवता है हमारा, जिन्हें आपका कोई होश जाने वाला है नहीं। फिर वो उसकी बात आती है क्या, कुछ बड़े देवता से समय नंबर का पत्र है, पत्र को सिर्फ सत्संग के लिए लिखा है, लेकिन पत्र का प्रारंभ वो किससे किया है, बात उनको सत्संग कराने के लिए बोलती है और प्रारंभ किया है वो क्यों, कि ये भीड़ का विषय है, इससे पहले कोई प्रारंभ नहीं होता, तो यही मंगल प्रारंभ है, आगे के सब प्रधान है जो मंगल में कल्याण करने वाले हैं। इसलिए बात हर शास्त्र में अनेक बार आएगी, यही कारण है इसका, वो इच्छा हो चुके हटाए नहीं करते, हम बार बार आएंगे वो बात, उसके बाद भक्त का नियम होता है, उसके बाद या माता का वास्तव में देश से ही योग्यता पात्रता चालू होती है, इसके पहले जो चालू हुआ है लागू छोड़ दो अभिप्राय करते, इसके पहले कुछ चालू हुआ ये नहीं, पात्रता भी मत मान लिए मान लेना, योग्यता भी मत मान लेना, ये श्री गुरु की आज्ञा समझना, उन्होंने आज्ञा दे दी हमें, क्या हमारे शुरुआत यहाँ से हुई थी, आपके शुरुआत भी यहाँ से होनी जरूरी है, इसके पहले शुरुआत हुई है वो बात भूल जाओ, नहीं करके कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, उसकी कीमत क्यों देते, ये बात
है, वो विजाओं के साथ साथ जो चालू होता है, पहले में क्रम पड़ेगा
लेकिन कितने परिणाम को एक साथ हमने रखते हैं, क्योंकि गुणागत अनेक अनेक हैं, जैसे नीति है तो श्रद्धा में प्रसन्न होकर मंदता विधि के लिए, ज्ञान में अवलोकन चालू हुआ तो अपनी कमी क्या है, कहाँ है, कैसे राम देश होते, किस प्रकार के अपराध होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसमें जानना है। आश्रम में एकदम सफाई की सुविधा हो जाएगी, क्योंकि दर्शन में उन्होंने हुआ है, चालीस नंबर से भी नहीं रहता, एकदम सफाई की सुविधा हो जाएगी। अब क्या होती है कि अपने परिणामों को देखते हुए उसकी खोज चालू होती है, तो कोई कैसी चालू होती है कि जैसे माथे में कीड़े पड़ गए, क्या माथे में कीड़ा पड़ता है उसको कहीं चैन नहीं होता। मैंने जब सुना कि मेरा परमात्मा मेरे भीतर में है और उसका दर्शन भी मुझे नहीं हो रहा है, उसका उसको स्वयं के रूप में अनुभव करना, अभेद भाव से उसका अनुभव होना, इस विषय में पूरा वियोग चलता है। ये जो वियोग है इसकी एक दृढ़ वेदना पर्यादृष्टि इसलिए नहीं आएगी। पर्यादृष्टि किसे कहते हैं पहले ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जितनी वर्तमान पर्याय दृष्टि है उतना ही मैं हूं, ऐसा अनुभव को पर्यादृष्टि। यहां तो हम हमारे स्वरूप को पढ़ने को मिल रहे हैं, इसलिए वर्तमान पर्याय जितना मैं हूं वो बात तो वहां टिकेगी नहीं, वो बात तो तीनों दिन पड़ गई, पहले तो वही थी, जो जो पर्याय आते थे उस रूप अपने आप को पूरा अपना अनुभव करने लगते थे, अब तो इतने ही खुद हो गए नहीं, ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, ये अस्थाई चीज है, मेरा स्वरूप स्थाई कोई शाश्वत है तो कैसा है, इसकी खोज में जब मैं लगता हूँ तो वर्तमान पर्याय जितना हो तो बात ये अवश्य अवश्य पड़ जाएगी, उसी को ही वो ढीली पड़ने के वही दर्शन बहुत ही अधिक मददा कहने में आती है, जो उत्तम के योग्य होने वाले आगे जा सकते हैं, क्योंकि निर्गुण पदार्थ की खोज है, जो खोज है वो पदार्थ में तो अनादिंग नहीं है, लेकिन वो कैसा इसकी जिज्ञासा अपूर्व जिज्ञासा में एक दफे तो बाते में कीड़े पड़ जाने चाहिए। जब कहीं पर ये खोज का परिणाम फल नहीं आए ऐसा बनने वाला नहीं है, ऐसा होता है, होता है तो ऐसा होता है, परमात्मा सब पदार्थ हैं पर्याय में, जब सफाई हो जाती है सब मलिनता में पवित्र परमात्मा की पधरावणी होने वाली है, ऐसी बात हमें एक अंश की मलिनता अवस्था में भी नहीं चाहिए, स्वरूप को देखने का बाकी है हमारे, लेकिन हमारे अवस्था में जो मलिनता का अनुभव हो रहा है तो अंत में भाग में भी वो कलंक है, हमारे माथे वो कलंक है और एक अंश भी कलंक का हम नहीं चाहेंगे, ये हमारा ध्येय है, ये हमारा गोल है। तो फिर इसमें एकत्व किस आधार से टिकेगा, फिर इसको टिकने का आधार कौन है, वो तो जब तक टिकने वाला था हमारी अनंत शक्ति संपन्न आत्मा का बैकिंग उसको मिलता था, तब वो टिकता था, बैकिंग हट गया निराधार हो गया, उसकी ताकत का ना रही, उसकी ताकत है ही नहीं, हमें उसको आधार देने वाले थे जो हमारी अनंत शक्ति से उसको आधार देते थे, तब तो वो चालू रहता था, अब तो ये मृतक प्राय हो जाता है, हमारा आधार किस गया, मुर्दा हो गया, जिंदा रहने वाला नहीं। तो ऐसी जिज्ञासा जन्य अंतर शोधक वृत्ति रहती है, करते करते वो बात नहीं है अभी, ये रहती है, ऐसा हुए ही हुए ये भेद का है, इसका लक्षण है कि भेद बता के नहीं होता, समझा ऐसा ऐसा ही होगा, समझा ऐसा नहीं होता, बस सीधी बात है, ये तो माप नाप लेना, ये सब बातें अपने परिणाम को चेक करने के लिए, अवलंबन करने के लिए नहीं है, क्या कृतज्ञता करने के लिए भी नहीं है, ये फैल होता है, इससे पहले शुद्ध फैल गया है, कि फैल कैसा होता है इसका वर्णन नीचे चलेगा, पहले बात निकली, क्या क्या परिणाम होते हैं कि स्वरूप प्राप्ति की अंतर अंतर की गहराई में से उत्पन्न भावना एक, अपूर्व जिज्ञासा जन्य अंतर शोधक वृत्ति, तीसरा निरावलोकन अपने परिणामों का सूक्ष्म अवलोकन चालू हो जाता है, जो जो पहले दिखने में नहीं आता था वो दिखने में आता है, और जो दिखने में आता था वो बड़े दिखने में आता है, नहीं अभी इसकी खोज चलती है ना, तो अभी तो अवलोकन अपने भाव का होगा, और अपने भाव का चलते परिणाम में अवलोकन होने से, चलते परिणाम का अवलोकन होने से विभाव विभाव टूटते जाएगा, क्या होगा विभाव टूटते जाएगा, प्रखंड की हानि होगी, हमारे दोष का बचाव हम कभी नहीं करेंगे, है कभी होगा नहीं हमारे से, और एक सबसे अच्छी बात है जो हमने यहाँ पर लिखने को सीख गए हैं, जो कभी चलता है कोई बात में नहीं चलता है, लेकिन एक बात जो यहाँ नहीं लिखी वो वो है कि जब अंतरलोकन सतत चालू होता है, पर इस अवलोकन का अभाव इस तरह से होता है कि हमें अनुभव किस चीज के किस भाव का हो रहा है, तो उसमें तीन प्रकार के भाव हमारे अनुभव में आते हैं, इसको संक्षेप में तो ले लिया है कि विभाव की पहचान होती है, विभाव में माने क्या, विभाव मैंने दुख, अनेक प्रकार के वैधाविक परिणाम, अनेक प्रकार के होते हुए भी उसके उसमें सामान्य इसका जो स्रोत है विभाव का वो दुख है, दुख भी है, मलिनता भी है, और अपने जानने वाला ज्ञान पर्याय से विरुद्ध जाति का अंधकार में है, ज्ञान एक प्रकाश में है तो ये अंधकार है, तो तीन मुद्दा जो है तो सबों में तीन सामान्य है, सभी विभागों में सामान्य है, तो अंतरावलोकन के अभ्यास से अनुभव प्रकृति से उसकी अनुभव पूर्वक समझ आती है, क्या आता है अनुभव पूर्वक उसकी समझ आती है, जैसे मलिनता क्या चीज है और दुख क्या चीज है, हम तो आकुलता होती होती है उसको दुख को समझ ही नहीं सकते, लेकिन सूक्ष्म विकल्प भी दुख है, ये विभाव जाति की पहचानने में अंतरवलोकन में ये अभ्यास है, ये पकड़ने में आ जाएगा, और दुख हमारा स्वभाव से विरुद्ध हो गया, कोई जीव नहीं चाहता, हम तो नहीं चाहेंगे, कोई जीव देवता नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ से हटने का प्रयास है तो करना नहीं पड़ेगा, फैल होने लगेगा, ये आनुषंगिक परिणाम है, तो स्वतः ही कैसे कैसे होते जाते हैं, किस तरह से होते जाते हैं, और फैल क्यों होता है इसका ये विचार है, मत करो उसके लिए, पहले तो विकल्प में अगर लगेगा तो यहाँ से हटने के लिए कोई रास्ता हम खेलेंगे, जहाँ भी हमें दुख हो, जैसे हम धूप में खड़े हैं तो कहीं भी हमें आश्रय मिले भूख नहीं लगे ऐसा उसको उसकी खोज करेंगे कहाँ तक भूख में खड़े रहेंगे वैसे वैसे स्थिति होगी। तो ज्ञान वाणी है जहाँ दुख है जहाँ विकल्प है बदल में ज्ञान का प्रयास चलता है फिर हमारी नजर आएगी क्योंकि वहाँ खिसकना चाहते हैं इसलिए अब तक हमारे हालत हुए वहाँ हमें रस आता है वहाँ खिसकना वहाँ से चाहते थे इसलिए ज्ञान पर आ नहीं सकते हमें राग का विज्ञान करके ज्ञान पर आना है लेकिन क्यों नहीं आ पाते यही कारण है कि उसका रस आता है इसलिए यहाँ आ नहीं सकते दुख लगे तो आते हैं गुरुदेव के परमात्म काल का 307 नंबर का रचना पढ़ लीजिए अभी तक समय नहीं है पढ़ लीजिए पृथक प्रकाशन सत्या कथन संदेह को प्रकाशन संदेह आएंगे 307 तो उसको तीव्र राग की अनुभूति होगी अवलोकन में और सुख दुख और चैन है उसका लगेगा तब हमारे ज्ञान पर आनंद तय हो जाएगा और ज्ञान में शांति और निराश होता है। पर ज्ञान में से एक ज्ञान पद जो खेत जंतिक जो अपना उपाध्याय चला सभी शांति का था तो एक ज्ञान पद का पता तब चलेगा क्योंकि वेदन ज्ञान का निर्विकल्प है इसलिए निर्विकल्प स्वरूप कहता है इसका पूरा अंदाज यानी पूरा भाव ये ज्ञान स्वरूप से आ जाता है कि हमारा निर्विकल्प पद कहता है कहता है क्योंकि वेदन हमेशा निर्विकल्प ही होता है वेदन स्वविकल्प वाला कभी किसी को होता नहीं है इसलिए निर्विकल्प समझना कोई बड़ी बात नहीं रही थी अगर वेदन ग्रहण हो गया तो निर्विकल्पता हमारे स्वरूप की क्या है बस पूरा स्वभाव में हमें पकड़ने में आता है निर्विकल्प स्वरूप वेदन तक आना पड़ेगा वेदन तक जब आएंगे कि विकल्प में दुख लगेगा तब जहाँ तक उसमें रखाता है ज्ञान में वेदन का पद तक आ नहीं पाएगा ये बात हो जाएगी। ये तो ऐसे तो पिछले हैं ज्ञान में से ही कि ज्ञान विशेष आविर्भूत हो गया तो क्या हो गया कि उसमें तो जैसा हमेशा सुंदर गाथा ने कहा कि नई शुद्धता पैदा हो गई तो रस आए बिना रहेगी।